नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 15 मार्च 2024 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, गाजा में जारी युद्ध के बीच विशाल जरूरतमंद आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के रास्ते में चुनौतियां। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी ने कहा, गाजा में युद्ध बच्चों पर छेड़ा गया युद्ध है। यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों द्वारा युद्ध बंदियों को यातना दिए जाने के मामलों में सामने आए नए साक्ष्य। धनी देशों में मानव विकास पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर, मगर निर्धनतम देशों के लिए गहरा झटका। और बाल मृत्यु मामलों में कमी लाने के लिए लड़ाई पहुंची एक ऐतिहासिक पड़ाव पर। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारियों ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य कार्रवाई के बीच मानवीय राहत अभियान की सख्त जरूरत है और सहायता प्रयासों को हमलों की चपेट में आने से बचाया जाना बहुत जरूरी है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी ने कहा है कि गाजा में युद्ध बच्चों पर छेड़ा गया एक युद्ध साबित हो रहा है। ये उनके बचपन और भविष्य पर एक युद्ध है। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
UNRWA के अनुसार पिछले 4 वर्षों के दौरान दुनिया भर में टकरावों में जितने बच्चों की मौत हुई है, उससे कहीं अधिक बच्चे गाजा युद्ध में मौत का शिकार हो चुके हैं। एजेंसी के महाआयुक्त फिलिपे लजारिनी ने गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि गाजा में पिछले 4 महीनों के दौरान लगभग 12,300 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न पदाधिकारियों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय पुकारों को दोहराया है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रमदान का पवित्र महीना शुरू होने के बावजूद गाजा में मौतें, बमबारी और रक्तपात का सिलसिला जारी है।
My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि मेरी प्रबलतम अपील रमदान की भावना का सम्मान करते हुए बंदूकों को शांत करने के लिए और जीवन रक्षक सहायता की आपूर्ति किए जाने के लिए है, और मैं साथ ही रमदान की दयालु भावना दिखाते हुए तमाम बंधकों की तत्काल रिहाई की पुकार भी लगाता हूँ। दुनिया की नज़रें देख रही हैं, इतिहास की नज़रें देख रही हैं, हम अपनी नज़रें नहीं फेर सकते और अधिक मौतों को रोका जाना होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की शांति पुकार। इस बीच यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने गाजा में भीषण स्थिति के बारे में गंभीर चेतावनियां जारी की हैं, जहां लगभग 5,76,000 लोग अकाल के निकट हैं। ये गाजा की लगभग 25% आबादी है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन में आम नागरिकों और बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार और संभावित युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के तथ्य सामने आए हैं।
The new evidence strengthens the commission's previous findings that torture used by Russian authorities in Ukraine and in the Russian Federation has been widespread and systematic.
आयोग के प्रमुख एरिक मोजे कह रहे थे कि जांच में मिले नए तथ्यों से इस कमीशन की पिछली पड़ताल के निष्कर्षों को मजबूती मिली है, जिनके अनुसार रूसी प्रशासन ने यूक्रेन और रूसी महासंघ में बंदियों को व्यापक स्तर पर और व्यवस्थागत ढंग से यातना दी। यूक्रेन के एक सैनिक और पूर्व युद्ध बंदी ने जांच आयोग को बताया कि हिरासत में रखे जाने के दौरान उन्होंने हर उम्मीद और जीवन जीने की इच्छा खो दी थी। उन्हें बार बार यातना दी गई, हड्डियां व दांत तोड़ दिए गए और एक जख्मी पांव में गैंग्रीन हो गया। भुक्तभोगियों ने जांच आयोग को बताया कि उनके निरंतर बर्बर ढंग से पिटाई की गई, लंबे समय तक हिरासत में रखा गया और मानवीय गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जांच आयोग ने शुक्रवार को जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस बर्ताव से बंदियों को शारीरिक व मानसिक सदमा पहुंचा है, जो लंबे समय तक जारी रह सकता है। हेती में आपराधिक गुटों की हिंसा के नियंत्रण से बाहर हो जाने की वजह से देश में एक बड़ा मानवीय संकट उपजा है। इसके मद्देनजर यूएन एजेंसियों ने आम लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं। हेती के प्रधानमंत्री एरियल ऑनरी ने हाल ही में त्यागपत्र देने की मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद देश के कई इलाकों में पहले से अस्थिर हालात को और झटका पहुंचा। अधिक जानकारी के साथ महबूब खान।
यूएन एजेंसियों ने पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक हवाई पुल तैयार करने की बात कही है, ताकि आम लोगों को राहत प्रदान की जा सके। हेती में संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत कार्यालय के अनुसार इस हवाई गलियारे के जरिए हेती तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकेगी और देश के भीतर व बाहर कर्मचारियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को बताया कि इस गलियारे को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। यूएन राहत समन्वय एजेंसी ओचा ने बताया है कि वर्ष 2024 के शुरू से अब तक देश भर में ज़रूरतमंद आबादी तक सहायता पहुंचाने के मार्ग में अवरोध खड़े किए जाने की 400 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इनमें 70 से अधिक मामले मार्च महीने के पहले सप्ताह में दर्ज किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा है कि हेती में 3,62,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में अब तक कम से कम 75,000 भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि साल 2023 में वैश्विक मानव विकास अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, मगर उसके साथ ही संपन्न और वंचित समुदायों के बीच की खाई और गहरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस विषमतापूर्ण विकास की वजह से सबसे निर्धन देश पीछे छूट रहे हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण को हवा मिल रही है। 2023 के लिए मानव विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर देशों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड राष्ट्रीय मानव विकास सूचकों में अग्रणी देश हैं, जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे पीछे हैं। मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बताता है कि COVID-19 महामारी के बाद धनी देशों में तेजी से विकास हुआ है, मगर विश्व के निर्धनतम देशों में से करीब आधे देश कोविड संकट से पहले के स्तर से भी नीचे लुढ़क गए हैं। इस रिपोर्ट के कुछ अहम निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 2023 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सभी 38 संपन्न सदस्य देशों ने 2019 की तुलना में बेहतर मानव विकास हासिल किया है। मानव विकास प्रक्रिया को सबसे अधिक हानि अफगानिस्तान और यूक्रेन में हुई है। अफगानिस्तान में HDI 10 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि यूक्रेन में ये 2004 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर है। 2020 या 2021 में 35 सबसे कम विकसित देशों में HDI में गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें से 18 देश अभी COVID-19 से पहले के स्तर पर नहीं लौट पाए हैं। 5 वर्ष की आयु से पहले असामयिक मृत्यु का शिकार होने वाले बच्चों के मामलों में गिरावट आ रही है। वर्ष 2022 में ये संख्या घटकर 39 लाख पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि बाल मृत्यु के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
वर्ष 2000 के बाद से अब तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर में 51% की गिरावट दर्ज की गई है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसल ने इस संबंध में दाइयों, स्वास्थ्य कर्मियों और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की है, जिनके परिणाम स्वरूप ये अभूतपूर्व सफलता हासिल कर पाना संभव हुआ है। हालांकि बड़ी संख्या में बच्चों की मौतें अब भी ऐसे कारणों से हो रही हैं जिनका उपचार संभव है। इनमें जन्म के दौरान पेश आने वाली जटिलताएं, न्यूमोनिया, दस्त और मलेरिया समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं। रिपोर्ट में सचेत भी किया गया है कि आर्थिक अस्थिरता, हिंसक टकराव, जलवायु परिवर्तन और COVID-19 महामारी के प्रभावों के कारण चुनौती बरकरार है और मृत्यु दर में मौजूदा विसंगतियां और भी गहरी हो रही हैं। विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में बेहतरी लाने और बच्चों की रोकथाम योग्य बीमारियों से रक्षा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा, रोजगार और उपयुक्त कामकाजी माहौल सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
यूएन महिला संगठन यूएन विमेन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद नसीरी ने कहा है कि समानता के लिए संघर्ष दरअसल लैंगिक समानता के लिए देशों के बीच, धनी और निर्धन समुदायों के बीच भी समानता का संघर्ष है। उन्होंने भारत को इस संघर्ष का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया, जहां महिला नेतृत्व में बढ़त हासिल करने के लिए प्रगति हुई है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 68वां वार्षिक सत्र 11 से 22 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इसी दौरान यूएन मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसे संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस गोष्ठी पर और जानकारी या वीडियो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, पता है news.un.org/hi। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।